शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। वैसे तो हम ब्राह्मणों के लिए रोज त्योहार है ना? रोज बाबा कहते हैं खुशी में रहना है, खाली एक दिन त्योहार के दिन नहीं। तो कल न्यू ईयर मनाया, वो अपनी खुशी थी, लेकिन हमारे लिए तो रोज ही खुशी है। तो बाबा कहते हैं जितने भी त्योहार हैं उन दिनों में, उस दिन बहुत खुशी तो होती है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सबसे बड़ा त्योहार ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? माताएं, शिवरात्रि, शिव जयंती। कई समझते ना, भारत में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे लिए शिवरात्रि ही सच्ची दिवाली है। क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तब सब आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, तो वही तो सच्ची दिवाली हो गई ना, जब सब आत्माओं की ज्योति बाबा आकर के जगाते हैं। इसलिए क्या करो, शिव जयंती का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाओ, दिवाली से भी ज्यादा धूमधाम से मनाओ, क्योंकि ये शिव बाबा के अवतरण का दिवस है। तो इसीलिए हम इसको जितना धूमधाम से मनाएंगे उतना लोगों को संदेश जाएगा कि सचमुच ये शिव परमात्मा का जन्मदिन है। और केवल शिव बाबा का जन्मदिन नहीं, हम बच्चों का भी जन्मदिन है। तो एक बार तो दादी जी ने यहाँ तक कह दिया, हम सबका जन्मदिन शिव जयंती है बस, और दिन कोई नहीं। और कोई दिन अपना लौकिक जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन दादी जी ने कहा नहीं, बस शिव जयंती। वैसे तो दादी जी कहते थे दिवाली पर यज्ञ स्थापन हुआ, सरेंडर हुए, तो दिवाली हम सबका जन्मदिन, तो शिव जयंती उससे भी बड़ा जन्मदिन हुआ। तो क्योंकि भगवान का अवतरण और भगवान के साथ बच्चों का अवतरण, तो इसीलिए आज बाबा ने खास कहा है। तो अभी 2025 में शिव जयंती आ रही है, 26 तारीख, 26 फरवरी ना, 26 फरवरी ऐसे ने जा पड़ा, और 25 को बाबा है। तो इसीलिए ये धूमधाम से मनाओ। बाबा ने आज बहुत डायरेक्शन दिए कैसे शिव जयंती मनाओ, परंतु फिर उसके साथ साथ बाबा धारणा की कितनी बातें सुनाते हैं कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि देहधारियों की याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे, केवल बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, अंत में यही काम आएगा, और कोई देहधारी की याद काम में नहीं आएगी। और फिर बाबा कहे तुम वास्तव में सब योगी हो, सारी दुनिया योगी है, क्योंकि किसी न किसी के साथ योग है, लेकिन वो तो योगी है, क्योंकि देहधारियों से उनका योग है तो भी कहेंगे ना उनके साथ योगी है, लेकिन तुम बच्चे राजयोगी हो, केवल योगी नहीं, क्योंकि योगी कहने से तो एक साधारण बात हो जाती है, क्योंकि सब योगी है, हर एक किसी न किसी को सदा याद करता ही रहता है, पर हम राजयोगी है। और राजयोगी और योगी में क्या अंतर है? राजयोगी माना अपने आप को आत्मा समझकर शिव परमात्मा को याद करना, ऊंचे से ऊंचे भगवान को याद करना, ये राजयोग है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा तुम जब लिखो भी तो ये नहीं लिखो बी होली बी योगी, लेकिन क्या लिखो, बी होली बी राजयोगी। तो राजयोगी जरूर लिखना चाहिए। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 2 जनवरी 2025 है। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। बाप कब आते हैं? एक्यूरेट है, एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं। बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस कल्प में बाबा इस समय आए तो अगले कल्प में ऐसे नहीं एक सेकंड के बाद आएंगे, नहीं उसी समय आएंगे, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? क्यों नहीं विनाश हो पाते हैं और किनके नहीं हो पाते हैं? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है। अब योग ठीक नहीं होगा तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है। इतनी सदगति नहीं होती माना ऊंच पद नहीं पाएंगे, विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। पाप रह जाते हैं फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। शिव बाबा की याद नहीं है, देहधारियों की याद है, तो देहधारियों की याद में तो फिर कईयों के नाम रूप में फंस जाते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहेगी, वो देह अभिमानी, वो देही अभिमानी रह नहीं सकते। देह अभिमान में है, देहधारियों को याद करते हैं, फिर नाम रूप में फंसते हैं, तो बाबा कहते हैं वो देही अभिमानी रह नहीं सकते, इसलिए फिर उनके विकर्म भी पूरे विनाश नहीं होते। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा ने प्रश्न किया है, सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, तो सवेरा कितने बजे होता है? तो कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे रात को। 12 बजे, वो 12 बजे माना सवेरा शुरू हुआ। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, सवेरा कब कहा जाता है? 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो, तो रात का 12 बजा है तो तुम सवेरा थोड़ी कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ, तो एएम अर्थात सवेरा शुरू होता है। फिर वो सब बदल जाता है, पीएम रात को 12 बजे, उसको मिडनाइट कहेंगे, और फिर 1 सेकंड जैसे शुरू हुआ बदल जाता है, वो पीएम बदल के एएम हो जाता है। तो 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते, 12:01 हुआ तो या 1 मिनट हुआ तो कहेंगे एएम अर्थात सवेरे सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है, ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ तो एएम भी नहीं कहेंगे, यह बेहद की बात है। तो हाँ, वो हद में वो पीएम एएम होता है, तो 12:01 हुआ, एएम हो गया 12 बजे दिन तक, फिर वो आफ्टरनून कहलाता है, मिड नून कहलाता है, और फिर उसके बाद पीएम शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो एएम नहीं कहेंगे, ये बेहद की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का एएम और पीएम एक्यूरेट चलता है, वो वैसे भी बहुत पंचुअल होते हैं ना, विदेशों में बहुत पंचुअल होते हैं, टाइम जो टाइम देते उसी टाइम पर आते, तो एएम और पीएम एक्यूरेट चलता है। उनों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वो इतना सत्व प्रधान भी नहीं बनते तो इतना तमो प्रधान भी नहीं बनते। पर भारतवासी ही 100% सत्व प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते। भारतवासियों पर तो विदेशी हंसी उड़ाते जब उनको कहते हैं ना कि आप 10 बजे ठीक आ जाना, तो हाँ हाँ करते हैं, तो फिर कहते इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, हाँ 10 बजे को और 10:30 पहुंचे, 10 बजे माना एक्यूरेट 10 बजे। पर भारतवासी समझते 10 बजे तो कहा है ना, कोई बात नहीं, अब 10:30 तक तो शुरू होना नहीं है, हम 10:30 ही जाएंगे, तो समझते हैं कि हमेशा लेट ही होता है भले कहा इतने बजे। तो बाबा कहते हैं तो भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है, सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते हैं, सेकंड पास होने में मालूम ही नहीं पड़ता है, अब एक सेकंड हुआ हो गया पता ही नहीं चला, तो 1 मिनट ठीक कहे। बाप को मालूम ही नहीं पड़ता सेकंड चला गया। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वो कौन है कब आते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। खाली आओ आओ कहते हैं, लेकिन वो कब आते हैं बाबा कहते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, और वो है कौन ये तो बिल्कुल पता ही नहीं। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है, काम विकार के वश है तो तमो प्रधान ही है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते, ऑर्डर से भी बड़ा होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर से भी बड़ा होता है, खास करके मिलिट्री में ऑर्डिनेंस निकलता है। ऑर्डिनेंस निकलता है कि सब अब जो छुट्टी पर है सब वापिस आ जाओ, तो एकदम वापिस आना पड़ता है, अगर नहीं वापिस आए तुरंत, सोचा 8 दिन के बाद जाएंगे तो नौकरी से छुट्टी, तुरंत ऑर्डिनेंस है ये। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद का बाप भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं, खाली ऑर्डर नहीं ऑर्डिनेंस, उनसे भी पूरा फरमान, जबरदस्त फरमान, क्या बच्चे काम जीत जगत जीत बनो, अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। कितना बड़ा, कितनी बड़ी सावधानी, अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, हाँ बी होली बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वो भी तो योगी ठहरे, पर वो हठ योगी है, पर है तो योगी ना, तो ब्रह्म से योग लगाते हैं तो वो भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाते हैं, हाँ वो भी सब योगी ठहरे, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग, बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली और बी राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है, बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। कल बाबा ने क्या कहा, गुह्यतम, गुह्य से गुह्य और भी उसे गुह्य, तो गुह्यतम हो गया हाईएस्ट, जो और कोई नहीं सुना सकता, गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है, अब शिव जयंती पर बाबा ने बहुत कुछ कहा है, शिव जयंती आने वाली है, शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है, शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ, और लिख दो, बोर्ड बना के लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो, ये लिख दो। भल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। सुना, जो परिवारों में रहते हैं उनके लिए भी है, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। सेंटरों पर तो लड़ियां लगाते ही रहते हैं, बहुत सजाते हैं शिव जयंती पर, लेकिन बाबा कहते हैं घर में भी ये करो। तो बाबा कहे कि भल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम हो, बाबा हमको बच्चियों को क्या टाइटल देते हैं, तुम हो ज्ञान गंगाएं। तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। गीता पाठशाला का मतलब नहीं है गीता पाठशाला खोल के बैठो सभी घर घर में, उस रूप से नहीं, यानी जो भी आपके घर में आए उनको बाबा का परिचय जरूर दो, चित्र लगे हुए हो। तो बाबा कहते तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, भक्ति मार्ग भी पहले तो बहुत पढ़ते थे, रोज सुबह बिना नागा नहा धोकर के सब इकट्ठे बैठते थे, और जो बुजुर्ग होते थे वो फिर गीता सुनाते थे, तो सब उसमें बैठते थे, छोटे बच्चे बड़े सब। घर 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 में गीता तो पढ़ते है ना, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहां गीता पढ़ते। ब्रह्मा बाबा तो रोज करते थे, नहा धोकर के बाबा गीता पढ़ते थे, फिर सारा घर परिवार सब बैठते थे और बाबा गीता सुनाते थे और सब सुनते थे। आजकल तो ये सब भूल गई है रसम रवाज है, लेकिन पहले तो ये बहुत था। एक कुटुंब परिवार भी होते हैं, ऐसे कुटुंब परिवार होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। दीपावली से भी ज्यादा, हाँ, शिवरात्रि पर खूब धूमधाम से मनाओ। तुम्हारी सच्ची दीपावली वास्तव में शिव जयंती का त्योहार है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, फाइनल तो होना ही है सतयुग में। सच्ची दीपावली तो फाइनल तो सतयुग में होगी जब लक्ष्मी से आए, हाँ, विराजमान होगी। लेकिन बाबा कहते अभी तुम्हारे लिए सच्ची दीपावली है, क्योंकि घर घर में ज्योति जग जाती आत्मा की। तो फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां तो घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधेरा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है, वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। एक पेनी माना पाई जैसी की भी वैल्यू नहीं थी, अभी तुम पाउंड बन रहे हो। नहीं तो पाउंड की वैल्यू अगर देखा जाए रुपए की भेंट में बहुत ज्यादा है, रुपए की वैल्यू तो बहुत कम हो गई है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी अपवित्र है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े ही यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। जो यथार्थ समझेंगे उनको ही खुशी होगी, अब यथार्थ ही नहीं समझते तो खुशी भी नहीं होगी। नंबर वार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। ग्रहचारी हो गई तो पुरुषार्थ तो होता ही नहीं है, न याद ठहरती है न पुरुषार्थ होता है। ग्रहचारी भी होती है, कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। फेमिलियरिटी भी आई, किसी के नाम रूप में फंसे तो भी समझो राहु की दशा शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, बॉक्सिंग मल्ल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा। माताओं ने देखा है मल्ल युद्ध कैसे आपस में हम वो एक दो को मारते हैं। माताओं ने देखा नहीं होगा मल्ल युद्ध, क्योंकि माताएं होती है घर की घरेत्री। अब घर में ही रहेगी, चार दीवारों में रहती है, बच्चों को संभालती है। उस समय कोई टीवी वीवी भी तो नहीं थी जो बैठ के टीवी में देखे, कुछ भी नहीं था। और फिर बच्चों को पालना चार दीवारों में ही, कहीं बाहर भी कोई सोशल एक्टिविटीज तो थी नहीं। तो बाबा कहते हैं तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की घरेत्री। घरेत्री माना घर में रहने वाली, घर को संवारने वाली, परिवार उनके लिए सब कुछ है। अब तुमको मालूम है, बाबा ने दूसरा मिसाल दिया घरेत्री का, जो घर बहुत सुंदर बनाती है, कौन? तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। बहुत अच्छा घर बनाती है भ्रमरी, बहुत कैसे घर बनाती है। फिर बाबा बताते हैं कि वो घर बनाती है अर्थात घरेत्री है, घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, कई ऐसे पक्षी भी होते हैं कितना सुंदर अपना घोंसला बनाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि भ्रमरी भी ऐसे करती है, इसीलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। जैसे मिस्त्री लोग घर बनाते हैं ना, तो पक्षी भी देखेंगे एक 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 वो कैसे लेकर के आते हैं, वो तार लेके आते हैं या कुछ पन्ना ले कुछ भी लेके आते हैं और घर बनाते, तिनका लेके आएंगे और घर में डालेंगे। तो बाबा कहते हैं पक्की मिस्त्री है, दो तीन कमरा भी बनाती है, घोंसला बनाती, घोंसले के अंदर एक कमरा, फिर अंदर में दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा बना देती है और वहां जाके अंडे देती है, समझो, तो किसी को पता भी न चले। तो दो तीन कमरा बनाती है, तीन चार कीड़े ले आती है, ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे एक दो को बनाओ चाहे दस बारह को बनाओ, भू भू करो और उनको पंख दिलाओ। तो चाहे एक को करो चाहे दस बारह को, चाहे सौ को चाहे पांच सौ को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, ये भी घर बनाना हुआ ना। मंडप होते बनाते भी सेंटर में, इतना बड़ा हॉल नहीं है और बड़ा प्रोग्राम करना होता है तो मंडप बनाते हैं, और मंडप में प्रोग्राम करते हैं तो वो भी जैसे घर हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो, भाषण करते हो तो भूंगू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं और कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म का नहीं है, वो देवता बनने वाले नहीं है, बस चलो आए थोड़ा सुना चले गए, तो इस धर्म के वो नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उन ब्राह्मणी से तो जास्ती है ना। वो ब्राह्मणी में भी इतनी ताकत है जो भूं भूं करके पंख दिला देती है कीड़ों को, तो तुम्हारी तो उनसे ज्यादा ताकत है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चलकर 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। अभी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ये सब है। दादी जी ने तो 1 लाख की सभा में भी भाषण किया, दादी जानकी ने भी, दादी को बहुत होता था 1 लाख की सभा। उस दिन बाबा ने भी वर्णन किया, मुंबई वालों ने पहले, अहमदाबाद वालों ने पान का बीड़ा उठाया, दादी जी ने सब टीचर से पूछा कौन 1 लाख की सभा बुलाएंगे बुलाएगा और प्रोग्राम करेगा, तो सबसे पहले सल्ला दीदी ने हाथ उठाया, सबसे पहले। फिर पूछा दूसरा और कौन 1 लाख की सभा बुलाएगा, तो फिर संतोष दीदी बॉम्बे की, महाराष्ट्र की इंचार्ज, तो हम लोग करेंगे। तो सचमुच किया, एक स्टेडियम ले लिया, अहमदाबाद का भी बड़ा स्टेडियम, फिर बॉम्बे का, और उसमें प्रोग्राम किया था। 1 लाख से तो क्या 1.5 लाख भी आ गए। तो बाबा कहते तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे, भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। हाँ बाबा, किस कितनी कितनी चीजों से भेंट करती है। उस दिन बाबा ने किससे भेंट की, हाँ ये पहले कभी फूलों से भेंट करते हैं, कभी दिए से भी भेंट करते हैं, कल बाबा ने, परसों बाबा ने बादलों से भेंट की, तो आज बाबा भ्रमरी से भेंट कर रहे हैं। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गुरु बन कफनी पहन कर जाती है। अभी देखना, अभी कुंभ मेला आएगा, कितनी स्त्रियां भी सन्यासी कफनी, वो गेरुए वस्त्र पहन करके वो अपना प्रचार करती है। तो आजकल माताएं भी गेरु कफनी पहनकर जाती है, फॉरेनर्स को ठग करके आती है, ठग करके आती है, उन खूब धन लूट के आते हैं ना, कई विदेश जाते हैं, खूब धन कमा के आते हैं, फॉरेनर्स को ठग करके आती है, उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। अब सच्चा राजयोग तो केवल भगवान ही सिखाते हैं, कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं सिखा सकती, पर वो कहते हैं भारत में चल के सीखो प्राचीन योग, हाँ राजयोग। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम क्या कहेंगे, भारत में चलकर सीखो नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहीं बैठ समझाएंगे, सेंटर ही खोल देंगे, हाँ फॉरेन में जा करके, ऐसे नहीं भारत में आके सीखो, तो सेंटर ही खोल देंगे, उनको ब्राह्मण बना देंगे, फिर वो बाबा के घर में आते हैं। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहीं बैठ समझाएंगे, ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात ही नहीं है, रंगीन कपड़े पहनते हो भले पहनो, मना तो है नहीं, इसीलिए इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं, यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो, सारी वर्ल्ड सारी दुनिया सभी धर्म वाले इस समय आयरन एज में है, ऐसे नहीं किसके लिए इस गोल्डन एज है, नहीं सबके लिए आयरन एज कलयुग है, नरक है। कोई भी धर्म वाले मिले तो उनको कहना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। हाँ ये जो संदेश है ये सबके लिए, सब धर्म वालों के लिए, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं, और धर्म वालों को जास्ती नहीं बोलो, इतना ही बोलो, तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे ऐसे बोलेंगे तो समझेंगे नहीं, इसीलिए इतना ही बोलो। ये तो बहुत सहज है, तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, हाँ कोई शास्त्र में भी होगा घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया कि मुझे कोई ने बताया नहीं, हाँ तो बाबा कहते अंत में कोई भी उलहना न दे, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए, एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। अभी तो कहते ना कहाँ न कहाँ कल की अवतार कह रहे हैं, कलयुग अंत में कल की अवतार, फिर कहते कहाँ न कहाँ आए हैं। तो बाबा कहते हैं एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डीटीजम था देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देश सहित सब संबंधों को छोड़ो, कल भी बाबा ने कहा स्लोगन बनाने चाहिए, अभी तो बहुत स्लोगन्स बनाते और स्लोगन्स इतनी सुंदर बना के भेंट भी करते VIPs को भेंट करते, बहुत खुश हो जाते, कहते हाँ ये तो हम लगाएंगे अपने घर में अपने दफ्तर में। तो बाबा कहते हैं तो स्लोगन बनाने चाहिए, बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, सबको भूलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, तो कोई योग बल से पवित्र बनेंगे, कोई सजा बल से बनेंगे, लेकिन सब जाएंगे घर और फिर जिस जिस धर्म के होंगे उसी सेक्शन में जाकर बैठेंगे परम धाम में, तो सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है ये, तो बुद्धि में धारण होना चाहिए ना, हाँ इतना सहज ज्ञान बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते हैं, और सर्विस करते हैं तो छिपे नहीं रह सकते हैं, डिस सर्विस करने वाले भी छिपे नहीं रह सकते, पता तो चली जाएगा ना, ये जाकर के बाहर जाके डिस सर्विस करता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम करता तो वो भी पता चल जाता है, और जो सेवा करते हैं खूब बाबा का संदेश खूब देते हैं तो उसका ही पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते, सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे। अब कई समते हमको क्यों नहीं बुलाते, हमको क्यों नहीं बुलाते, आप सेवा ही नहीं करते हो तो क्या बुलाएंगे आपको, लेकिन केवल ज्ञान सुनाने वालों को ही नहीं सुना बुलाते, कई कारणों से बुलाते। एक हमारा इटली में भाई है, क्या नाम है वो जो पिज्जा बनाता है, जॉर्जियो, तो वो पहले यहाँ वो कुछ समय रहा ज्ञान सरोवर के बाहर वो सालगांव में, और वो बहुत अच्छी पिज्जा बनाता था, बहुत अच्छी पिज्जा, बस जॉर्जियो तुम कहाँ हो, पिज्जा बनाओ पिज्जा बनाओ। अब इतना मशहूर हो गया कि विदेशों में जब रिट्रीट होती थी तो जॉर्जियो को खास पिज्जा बनाने के लिए वहां बुलाते थे। तो बताओ ऐसे नहीं कि खाली बस ज्ञान सुनाने वाले, भोजन पकाने वालों को बुलाते, पर अच्छा भोजन तो बनाएंगे, टोलियां अच्छी अच्छी बनाते हैं तो बुलाते हैं। आत्म प्रकाश जाता है, जहां जाता है वहां टोलियां सिखा लेता है, सब विदेशियों को भी टोली बनाना सिखाता है तो बुलाते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं तो जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे, वो तो और ही नाम बदनाम कर देंगे और ही डिसर्विस करके आएंगे, बस घूमना है खरीदारी करनी है, बस घूमना है घूमना है, और फिर खर्चा सेंटर का, भाई तुम आए हो घूमना है तो अपना खर्चा करो ना, फिर सब सेंटर का, सेंटर पर सब मिले कैसे मिलेगा, घूमने के लिए केवल आए हो, सेवा के लिए विशेष आए हो तो चलो क्यों नहीं खर्चा देंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बीकेस क्या ऐसे होते हैं क्या, पूरा रेस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना, ज्ञान पूरा सुना नहीं सकते ठीक ढंग से बता नहीं सकते तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हाँ कई लोग कहते हैं आप लोग तो विदेशों में जाते हो, पर हम तो कभी कहीं नहीं गए कि कहीं भी नहीं, भाई हम मॉल में जाना है ये लेना खरीदना खरीदना कभी नहीं गए, सोचते भी नहीं हम कि हमको कोई वहां ये जाकर के शॉपिंग करनी है, बस बाबा की सेवा के सेवा और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं पूरा तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा न सके, जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है पद्मपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, है ना, दुनिया में तो है ऐसे ऐसे बेगर्स भी आकर के प्रिंस बनेंगे, पर वो अगर ज्ञान ले लेवे तो वो बहुत ये गरीब है, लेकिन वो बाबा कहते हैं प्रिंस बन सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर तो प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना ब्रह्मा बाबा के लिए, बाबा खुद कहते ये बेगर था ना, थोड़ा बहुत कमाया बाबा ने, जितना कमाया वो भी तुम बच्चों के लिए। शिव बाबा ने उनको कहा भी सब माताओं बहनों के नाम पर सब समर्पित कर दो, हाँ ट्रस्टी उन पर विल, उनको विल कर दो। तो सब बाबा ने श्रीमत दी और फट से बाबा ने माताओं बहनों के नाम पर विल कर दिया। तो बाबा कहते हैं वो भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था बाबा, ब्रह्मा बाबा लौकिक में तो गांव में रहता था ना, उनका जो फादर था पिता वो गांव का कोई प्राइमरी स्कूल का ये हेडमास्टर था, तो गांव में रहता था। तो बाबा कहते हैं इसलिए बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, इनका नाम श्री कृष्ण नहीं था, इनका नाम तो लेखराज था ना, तो नाम श्री कृष्ण नहीं था, पर उन्होंने तो फिर श्री कृष्ण को दिखाया है, गैया चढ़ाता था गांव में। अब नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था इनका, ये आत्मा की बात है तो वही आत्मा ना, वही श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में साधारण रूप में, और कैसे गांव का छोरा था शिव। तो बाबा कहते ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए है। तो बाबा ने समझाया है शिव जयंती पर हरे घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर के समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, कितने दुकान निकालते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजा सजाया हुआ दुकान होगा, बाबा के सेंटर्स भी कितने अच्छे सजे सजाए हो, दिवाली पर खूब शिवरात्रि पर खूब सजाओ तो लोग आएंगे देखेंगे, अरे इतना शिवरात्रि पर किया, चलो दिवाली पर करते तो सब करते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर भी इतना किया, तो तुम्हारा कितना अच्छा सजा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो तो लक्ष्मी से वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं दिवाली पर, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो कितने दीप जगाने चाहिए शिवरात्रि पर। ये राज बाप बैठ समझाते हैं, बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तो नॉलेजफुल हूं ना, हाँ ये जानते हैं, बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं, पर इसका मतलब ये नहीं हर एक के मन को मैं रीड कर रहा हूं, हाँ ये जानते हैं बाबा, ये जानते हैं कि फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक के अंदर को बैठ जानता हूँ, हाँ कोई समय पता पड़ जाता है ये पतित है, शक पड़ता है, पता चल जाता है उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, उनकी आंखों से पता चल जाता है कि ये पवित्र नहीं रहता है, ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, क्योंकि जैसे आएगा बाबा के घर में क्लास में बैठेगा अंदर में मन तो खाएगा ना, तो बाबा कहते हैं उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, बाबा भी कहला भेजता है इनसे पूछो, संदेशी को कह देता है कि इनसे पूछो कि ये पवित्र रहता है, हाँ बाबा को झट वो बास आती है, इनसे पूछो। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे कई बार हुआ था, संदेशी ध्यान में जाती थी और बाबा ने उनको कहा कि जाओ वापस जाओ, इस सभा में कोई ऐसा विकारी बैठा है, तो वापस आ जाती थी अभी, फिर बाबा को बताती थी बाबा ऐसे कोई है, तो बाबा फिर सभा में कह देते थे कि जो अपने आप को समझते मैं पवित्र नहीं हूँ वो भले सभा से जा सकते हैं, बस ऐसे नहीं तुम हो बस जो समझते हैं, तो इसीलिए वो फिर चला जाता था, सिर तो नीचे हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता था इनसे पूछो, ये भी ड्रामा में नोंद है, ये सब होता था ड्रामा अनुसार, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे, ऐसे तो ढेर है काला मुंह करते रहते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, अपना कर्म इसका खाता बनाया तो नुकसान खुद को ही होगा, सच बतलाने से कुछ फायदा होगा नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे, इसलिए अगर कोई भूल हुई तो सच बताना चाहिए, बहुत अच्छी कोई सेवा की तो बताने की जरूरत नहीं है, हाँ ऐसे नहीं है मैंने ये अच्छी सेवा की जरूरत नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल हो गया, लेकिन अगर भूल की तो फिर जरूर बड़ों को बताओ। तो बाबा कहते हैं सच बतलाने से कुछ फायदा होगा नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे, तो समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं, ये है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं, कांटों की दुनिया में वो कांटे की बात नहीं है, ये मनुष्य कांटे हैं, तो हम ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और ये है फॉरेस्ट जंगल, इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है, वही ब्रह्मा, हाँ कितना अंतर हो गया श्री कृष्ण और ब्रह्मा में, अभी सब है तमो प्रधान आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा में है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब ड्रामा में है, फिर स्वर्ग में ये कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होंगे स्वर्ग में, पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए, जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं उसमें देखते हैं दवाई देखकर दवाई देते हैं, तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, बाबा ने नंबर वन मंत्र दिया है कौन सा, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बच जाएंगे, शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा, उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग जरूर बनेगा, हाँ ये हो नहीं सकता कि नरक का नरक ही रहे स्वर्ग न बने, जरूर स्वर्ग भी बनेगा, तो बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है बाप की याद नहीं रहती तो कुछ भी समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते, योग युक्त न होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं फिर पद भी कम हो जाता है, बहुत है योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी, अब जिसके नाम रूप में फंसेंगे उसकी याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है, दूसरा सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है, ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें तो इसमें भी सदा त्यागी रहे, इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर वन में जाने का फल मिला ब्रह्मा बाबा को। तो फॉलो फादर स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। फट से किसी की कमी निकालना, भूल निकालना, नुक्स निकालना, कमजोरी बताना, फट से एकदम से, अभी वो तैयार है उसके लिए या नहीं वो भी नहीं देखेंगे। तो फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, आज दूसरी तारीख, तो शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कैसे? जैसे ऊंचे टावर से सकाश देते है ना, लाइट ऊंचे टावर से चारों ओर जाती है, लाइट हाउस से लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपने ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। सुना, जनवरी महीने में 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तभी दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। अभी जनवरी मास में तो चारों ओर बठिया ही चल रही है, हर सेंटर पर बठिया है, तो इसीलिए बाबा ने देखो आज 4 घंटा तो बठिया तो है। अभी शांतिवन में भी बठी का प्रोग्राम है, वो भी मैं अनाउंस करूंगी। ये भी अभी तक आ रहा है, 2 तारीख सकाश देने की सेवा करो। तो उसके लिए क्या करो, स्वमान में रहो, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। योग अभ्यास करो, मैं आत्मा बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। परम धाम निवासी मास्टर ज्ञान सूर्य वन सारे विश्व को लाइट माइट की सकाश दे रहा हूँ। और धारणा, कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट माइट देना, उसी अनुभव में रहना। चिंतन, ऊंची स्थिति और ऊंचा स्थान कौन सा है, उसका अनुभव क्या है, उस पर चिंतन करना। तो जैसे बताया कि सभी परिसरों के समर्पित और ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के सभी समर्पित और ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए संस्कार परिवर्तन, ये गहन योग तपस्या बठी दिनांक 4 से 7 जनवरी, आज 2 तारीख है, परसों से 4 से 7 जनवरी 2025 तक मानसरोवर में आयोजित की गई है। मानसरोवर भी बहुत सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। तो मानसरोवर में आयोजित की गई है ये बठी, केवल एक ही ग्रुप में रहेगी, बहुत बड़ा ग्रुप होगा जरूर। तो तीनों कैंपसेस के समर्पित और ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए है, 4 से 7 तक, जिसमें 4 तारीख को वहाँ पहुँचना और 4 तारीख शाम से बठी शुरू होगी, 5 और 6 जनवरी बठी होगी और 7 तारीख को सुबह जाना। इस बठी में बैठने के लिए आप अपना नाम एजुकेशन विंग ऑफिस के चुनेश भाई, जिनका फोन नंबर दिया है, अपना नाम नोट कराएं या व्हाट्सएप करें। तो नंबर दिया है प्रोग्राम फॉर डबल